प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व कि आज का ये अध्ययन आरंभ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
मेरे जीवन की निराशा पास मेरे ना आना न आना, यीशु से मैंने प्रीत लगाई,
आशा है आप प्रभु की दया से कुशल हैं और प्रतिदिन हमारे सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। हमारा विश्वास है कि आप निरंतर आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम नए नियम से मरकुस रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम मरकुस रचित सुसमाचार के तीसरे अध्याय को आरंभ कर रहे हैं। इस सुसमाचार का शीर्षक यहोवा का सेवक है और इसलिए मरकुस प्रभु यीशु मसीह की गतिविधियों को तीव्रता के साथ दर्शाता है। वो ये दर्शाता है कि परमेश्वर का सेवक बड़ी तीव्रता के साथ परमेश्वर के कार्य को पूर्ण करने के लिए इस पृथ्वी पर उपस्थित हुआ है। मरकुस के तीसरे अध्याय के मुख्य विशेष प्रकार से हैं, सूखे हाथ वाला व्यक्ति, गलील सागर के तट पर अनेक रोगियों की चंगाई, गलील सागर के आसपास अशुद्ध आत्माएं, शिष्यों को बुलाया जाना, फरीसियों का आरोप कि यीशु बाल जबूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, तथा छठा विषय है नया संबंध। इन्हीं विषयों पर हम इस तीसरे अध्याय में विशेष ध्यान करेंगे। यह अध्याय फरीसियों के साथ शब्द के विवाद के साथ आरंभ होता है। सो आइए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। आप भी अपनी पवित्र बाइबल को हमारे साथ खोलिए, और यदि आपके पास बाइबल की प्रति नहीं है तो ध्यानपूर्वक सुनने का कष्ट कीजिए। मरकुस रचित सुसमाचार का तीसरा अध्याय 1 से 6 पद, इन पदों में इस प्रकार से वर्णन है। और वह फिर आराधनालय में गया, वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया। वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी ताक में थे कि देखें वह सब्त के दिन उसे चंगा करता है या नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ बीच में खड़ा हो। उसने उनसे कहा, सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या घात करना? परंतु वे चुप रहे। उसने चारों ओर उनको क्रोध भरी दृष्टि से देखा और उनके हृदय की कठोरता पर दुखी होकर उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने उसे बढ़ाया और उसका हाथ फिर अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर निकले और तुरंत यीशु के विरुद्ध हेरोदियों के साथ सम्मति करने लगे कि किस प्रकार उसे नाश करें। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। आमेन। आइए मित्र, इस वचन को समझने के लिए हम परमेश्वर से सामर्थ और बुद्धि मांगें। हम प्रार्थना करें। हे महापराक्रमी जीवित और सच्चे परमेश्वर पिताजी, हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अपने सिरों को आपके चरणों में झुकाते हैं और आपको दंडवत और प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप अति महिमा स्तुति और धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमको ये सुंदर क्षण दिए हैं कि हम आपके जीवित और सत्य वचन का अध्ययन कर सकें। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि इस वचन को समझने, ग्रहण करने और इसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए आप हमें अपनी सामर्थ्य प्रदान करने की कृपा करें। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी रोग से पीड़ित है या किसी गंभीर पाप में फंसा हुआ है या चिंतित है, निराश है, प्रभु आप उसकी सहायता करने की कृपा करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हाँ तो मित्र, आइए हम इन पदों पर ध्यान करें। यहां पर प्रथम पद में हमने पढ़ा, और वह फिर आराधनालय में गया, वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। मित्रवर, अध्याय 2 में शब्द दिवस के विवाद का स्थान अनाज के खेत थे, जो सांसारिक स्थान था। यहूदियों का आराधनालय यहां पर है, जो कि एक पवित्र स्थल है, और आज सबत के विवाद का स्थल यही यहूदियों का आराधनालय है। सो आइए प्रथम पद पर विचार करें। और वह फिर आराधनालय में गया, वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। और इससे पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने खेतों में सबत के विवाद का सामना किया। दूसरे अध्याय के 23 और 24 पदों में हमने पढ़ा कि ऐसा हुआ कि वह सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेले चलते चलते बाले तोड़ने लगे, और फरीसी उससे कहने लगे, देख ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे स्पष्ट रूप में कहा, सब्त मनुष्यों के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के लिए, और इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त का भी स्वामी है। और इसी के पश्चात वो अब यहूदियों के आराधनालय में है, और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। हम नहीं जानते कि उसका हाथ किस कारण से सूखा था, किंतु वह उस आराधनालय में उपस्थित था। मेरा विचार है कि उन्होंने इस सूखे हाथ वाले मनुष्य को जानबूझकर वहां रखा था। वे जानते थे कि यीशु उसे अवश्य चंगा करेगा, क्योंकि यीशु तरस खाने वाला व्यक्ति है। और तब जब वो उसको चंगा करेगा, तब हम उस पर शब्द दिवस को तोड़ने का आरोप लगाएंगे। तो देखिए दूसरे पद को मेरे साथ। वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी ताक में थे कि देखें वह सप्त के दिन उसे चंगा करता है या नहीं। अब देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। तीसरे पद को देखें, उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ बीच में खड़ा हो। उसने उनसे कहा, सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या घात करना? परंतु वे चुप रहे। मित्रवर, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को बुलाकर सबके मध्य में खड़ा कर लिया, क्योंकि उनसे कुछ विशेष बात प्रभु यीशु मसीह करना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि आज सब्त के विषय में स्पष्ट विचारधारा प्रकट की जाए और इन यहूदियों को सब्त का महत्व समझाया जाए जो वास्तविक है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके समक्ष सब्त के विषय में उचित प्रश्न किया तो वे चुप रहे। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे सरल सा साधारण सा प्रश्न पूछा कि सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या घात करना? परंतु वे चुप रहे। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कोई उत्तर नहीं दिया, और मेरा विचार है कि उनकी भलाई चुप रहने ही में थी। तब पांचवें पद में हम पढ़ते हैं कि उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने चारों ओर उनको क्रोध भरी दृष्टि से देखा और उनके हृदय की कठोरता पर दुखी होकर उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। और उसने बढ़ाया और उसका हाथ फिर अच्छा हो गया। मित्रवर, प्रभु यीशु मसीह उन्हें सब्त दिवस के वास्तविक अर्थ को समझाते हैं। परमेश्वर का मूल उद्देश्य सब्त के पीछे क्या था? वे उसे भुला चुके थे। वे शब्दों तक ही सीमित रह गए थे। वे नियम और व्यवस्था की आत्मा से दूर हो गए थे। प्रभु जी को उनकी दुष्टता पर बड़ा क्रोध आया, परंतु उनके हृदयों की कठोरता पर वे दुखी हुए। उन्होंने उस व्यक्ति को चंगा किया, क्योंकि सब्त मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्त के लिए। किंतु वे लोग ऐसे कठोर थे कि वे नहीं चाहते थे कि सब्त के दिन उस मनुष्य को चंगाई मिले। उनको मनुष्य से कोई प्रेम नहीं था, वो तो केवल नियमों का पालन करना चाहते थे और स्वयं को परमेश्वर के वचन के उसकी व्यवस्था के रक्षक प्रमाणित करना चाहते थे। किंतु प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के उद्देश्य को, उनके स्वभाव को और शब्द के वास्तविक अर्थ को उन्हें समझाया और ये स्पष्ट किया कि शब्द मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य शब्द के लिए। तब छठे पद में हम पढ़ते हैं, तब फरीसी बाहर निकले और तुरंत यीशु के विरुद्ध हेरोदियों के साथ सम्मति करने लगे कि किस प्रकार उसे नाश करें। अब यहां पर देखिए कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उचित कार्य किया, मनुष्य की मानवता की सहायता की और परमेश्वर के परिदृश्य को उनके समक्ष रखा, तो वे धर्म के अगवे, धर्म के ठेकेदार प्रभु यीशु मसीह से घृणा करने लगे और उन्हें नाश करने की सम्मति करने लगे। अब आइए आगे हम देखते हैं कि क्या घटना घटती है। यीशु अपने चेलों के साथ झील को चला गया। गलील से एक विशाल जनसमूह उसके पीछे चला था, तथा यहूदिया, यरूशलेम, इदुमिया, यर्दन के उस पार तथा सूर और सैदा के आसपास से भी बड़ी भीड़ उसके सब कार्यों के विषय में सुनकर उसके पास आई। उसने अपने चेलों से कहा कि भीड़ के कारण एक नाव उसके लिए तैयार रखी जाए, जिससे कि भीड़ उसे घेर न ले। क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया और परिणाम स्वरूप वे सब जो रोगग्रस्त थे उसे स्पर्श करने के लिए उसके चारों ओर गिरे पड़ते थे। और जब कभी अशुद्ध आत्माएं उसे देखती थीं, तो उसके आगे गिर पड़ती थीं और चिल्लाकर कहती थीं, तू परमेश्वर का पुत्र है। और वह उन्हें बार बार चिताया करता था कि उसे प्रकट ना करें। मित्रवर, 11 और 12 पदों में हम देखते हैं कि अशुद्ध आत्माओं का संसार उन्हें पहचानता था। वो जानती थी कि ये परमेश्वर का पवित्र जन है। किंतु हमें इस अपराधी जगत की गवाही की आवश्यकता नहीं। हमें ये आवश्यकता नहीं कि दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह की गवाही दें। प्रभु यीशु मसीह को तो मेरी और आपकी साक्षी की आवश्यकता है। उन्हें आवश्यकता है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की साक्षी दें कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, जगत और मेरा उद्धार करता है। तब आगे हम पढ़ते हैं चेलों का बुलाया जाना। हम चेलों की बुलाहट और चुनाव में परमेश्वर का महान उद्देश्य देखने जा रहे हैं। तब 13 से 19 पदों में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया, जिन्हें चाहा उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने उनमें से 12 को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहें और कि वह उन्हें प्रचार करने के लिए भेजे और वे दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। फिर उसने इन 12 को नियुक्त किया, शमौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना जिसका नाम उसने बुएनर्गिस अर्थात गर्जन का पुत्र रखा, और अंद्रियास, और फिलिपुस, और बरतुल्मै, और मत्ती, और थोमा, और हलफई का पुत्र याकूब, और तद्दै, और शमौन कनानी, और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। मित्रवर, यहां विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं चुनाव किया। जिन्हें चुना उन्हीं को नियुक्त भी किया। वह चुनाव करता है जैसा कि यूहन्ना 15 अध्याय के 16 पद में बताया गया है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। ये पद स्पष्ट करता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं चुनाव करता है, और यहां भी उसने अपने चेलों का, अपने प्रेरितों का चुनाव किया और उन्हें नियुक्त किया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने प्रेरितों को अंतिम बुलाहट दी। लिखा है, तब उसने उनमें से 12 को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहें और कि वह उन्हें प्रचार करने के लिए भेजे और वे दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जिनको बुलाया उन्हें नियुक्त किया और उन्हें अधिकार देकर प्रचार करने के लिए भेजा। 16 से 19 पदों में हम प्रेरितों के नामों के विषय में पढ़ते हैं, जहां पर सबसे पहले हम देखते हैं शमौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह ने बुएनर्गिस अर्थात गर्जन का पुत्र रखा, और अंद्रियास, और फिलिपुस, बरतुल्मै, बरतुल्मै का नाम नथानियल भी है, और मत्ती, और थोमा, और हलफई का पुत्र याकूब, और तद्दै, और शमौन कनानी, और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इन 12 प्रेरितों को अपनी एक महान सेवकाई के लिए नियुक्त किया। ये वही हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने महान सेवकाई के लिए चुना। यही प्रेरित उनके गवाह बने और हम तक सुसमाचार को पहुंचाने का महान साधन बने। तब 20 और 22 पदों में हम पढ़ते हैं, जहां इस प्रकार से लिखा है, और वे घर आया और फिर एक ऐसा विशाल जन समूह एकत्रित हो गया कि वे भोजन भी ना कर सके। जब यीशु के कुटुंबियों ने सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले क्योंकि उनका कहना था कि उसका चित्त ठिकाने नहीं। तब शास्त्री जो यरूशलेम से आए हुए थे कह रहे थे, इसमें बाल जबूल समाया है और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। मित्रवर, ये बड़ा रुचिकर वृतांत है। प्रभु यीशु मसीह अपने घर आए हुए हैं और एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे है, और जब यीशु के कुटुंबी ये सुनते हैं कि यीशु वहां आया हुआ है, यीशु उनके घर आया हुआ है, सो मेरे मित्र, वो उसको पकड़ने के लिए निकलते हैं, क्योंकि वो कहते थे कि उसका चित ठिकाने नहीं है। ये कैसी रुचिकर बात है, ये कैसा उपहास है। मरकुस यहां पर दर्शाता है कि प्रभु यीशु कितने व्यस्त रहते थे। दूसरी ओर हम उनके कुटुंबियों की प्रतिक्रिया को देखते हैं। मित्रवर, यदि मनुष्य संसार की नाशमान वस्तुओं के लिए स्वयं को समर्पित करता है तो लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, उसको महान महान नामों से पुकारते हैं, उसे आदर और सम्मान देते हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के लिए अपने जीवन का समर्पण करता है, उसके लिए पूरी तरह से अपना जीवन अर्पित कर देता है, परमेश्वर के सेवा के लिए विश्वास योग्य बनता है, कर्तव्यनिष्ठ बनता है और बड़ी सत्यता के साथ उसकी सेवा करता है, तो लोग उसे पागल कहते हैं, इसका चित ठिकाने नहीं। मेरे मित्र, अनेक बार लोग उसको मतांध भी कहते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने इन्हीं सारी बातों का सामना किया। किंतु हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में हमारे समक्ष एक उदाहरण रखा है। यदि आप प्रभु के सेवक हैं और समर्पण के साथ सेवा कर रहे हैं और आपको भी लोग ऐसा ही कहते हैं, तो आनंद मनाइए। तो ये तो रही उनके कुटुंबियों की प्रतिक्रिया, किंतु शास्त्रियों की प्रतिक्रिया भी प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध है। वो उन पर आरोप लगाते हैं कि यीशु दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। वो कहते हैं इसमें बाल जबूल समाया है और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। मेरे मित्र, प्रभु यीशु मसीह उनके आरोप का उत्तर एक दृष्टांत के द्वारा देते हैं। स्वाइये उस दृष्टांत पर ध्यान करें। तब उसने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में ही फूट पड़ जाए तो वह राज्य स्थिर नहीं रह सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ जाए तो वह घर स्थिर नहीं रह सकता। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध उठ खड़ा हो और उसमें फूट पड़ जाए तो वह स्थिर नहीं रह सकेगा, परंतु यह उसका अंत होगा। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवान मनुष्य के घर में घुसकर उसकी संपत्ति नहीं लूट सकता, जब तक कि वह उस बलवान मनुष्य को पहले बांध ना ले, इसके बाद ही वह उसके घर को लूट सकेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा किए जाएंगे, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करता है उसे कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, परंतु वह अनंत पाप का दोषी ठहरता है। क्योंकि वे ये कह रहे थे उसमें अशुद्ध आत्मा है। मित्रवर, सर्वप्रथम प्रभु जी कहते हैं कि मैं शैतान की सहायता से ये कार्य नहीं करता, और दूसरे वो ये कहते हैं कि जब मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो यह सिद्ध हो गया कि मैं शैतान से अधिक बलवान हूं। क्योंकि उन्होंने यहां पर स्पष्ट रूप में बताया कि परंतु कोई मनुष्य किसी बलवान मनुष्य के घर में घुसकर उसकी संपत्ति नहीं लूट सकता, जब तक कि वह उस बलवान मनुष्य को पहले बांध ना ले। प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मैंने उसकी ताकत को नाश कर दिया है, शैतान की ताकत को मैंने बांध दिया है, और तभी मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं और मैं शैतान से अधिक बलवान हूं। 28 اور 30 پدوں میں ہم نے پڑھا، یشو مسیح کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ منشیوں کی سنتان کے سب پاپ اور نندا وے جو کرتے ہیں چھما کیے جائیں گے، پرنتو جو کوئی پوتر آتما کے ورودھ نندا کرتا ہے اسے کبھی بھی چھما نہ کیا جائے گا۔ متروار وے لوگ تریکت کے دو ویکتتوں کی نندا کر رہے تھے، وے پتر تتھا پوتر آتما کی ساکشی کو جھوٹا ٹھہرا رہے تھے، وے اوشواسی جیسا ویوہار کر رہے تھے، اس لیے ان کا پاپ چھما نہیں کیا جائے گا۔ پربھو جی پوتر آتما کی سہایتا سے دشٹ آتما کو نکالتے تھے اور وہ کہتے تھے اس میں دشٹ آتما ہے۔ پربھو یشو کو اسویکار کرنے کے دوارا وے پوتر آتما کا اپمان کر رہے تھے، اس کا سامنا کر رہے تھے۔ کنتو آج کوئی ویکتی ایسا پاپ کرے جس کی چھما نہ ہو، یہ اسمبھو ہے، پرنتو پربھو یشو نے منشیہ کے سمست پاپوں کے لیے اپنا بلیدان دیا۔ جب منشیہ اپنے مکھ سے پربھو یشو کی نندا کرتا ہے، اس کارن وہ دوشی نہیں ٹھہرتا۔ وہ دوشی تب ٹھہرتا ہے جب وہ نرنتر پوتر آتما کا سامنا کرتا رہتا ہے، اپنے من کو کٹھور بنائے رہتا ہے۔ یہی وہ پاپ ہے جو پوتر آتما کی ورودھ میں ہے۔ ہردے اور جیون میں پوتر آتما دوارا قائل کیے جانے والے کاریہ کی اوہیلنا کرنا ہی ایسا پاپ ہے جس کی کھما نہیں۔ اور ادھیائے کے انت میں پربھو یشو مسیح ایک مہتوپورن بات بتاتے ہیں، وہ ایک نئے سمبندھ کو پرکٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو کوئی پرمیشور کی اچھا پر چلتا ہے وہی میرا بھائی اور بہن اور ماتا ہے۔ میرے پریہ متر، آج کیا آپ اپنے جیون میں پرمیشور کی اچھا کو پورن کر رہے ہیں؟ یدی ہاں تو پربھو یشو مسیح کہتے ہیں کہ وہی میرا بھائی اور بہن اور ماتا ہے۔ اب انہیں وچنوں کے ساتھ پربھو آپ کو آشیش دے، آمین۔
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिखकर भेजें। इस विषय में हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।